Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om, Om, Om. Adi Guru, भगवान शंकराचार्य जी महाराज द्वारा विरचित शिवानंद लहरी नामक शिव भक्ति से ओतप्रोत स्तोत्र के आधार पर कुछ भक्ति भाव के शब्दों पर विचार कर रहे हैं। अभ्यास के लिए 39वां श्लोक। धर्मो में चतुरंग्रिका सुचरितः पापं विना संगतं काम क्रोध मदादयो विगलितः काला सुख विस्कृतः ज्ञानानंद महौषधि सुफलिता कैवल्यनाथे सदा माने मानस पुंडरीक नगरे राजा वतन से स्थिते दीयंत्रे न वचो घटे न कविता कुल्योपकुल्याक्रमैर आनीतेश्च सदा शिवस्य चरितां भोरासि दिव्यामृतैः हृत्केदारयुताश्च भक्ति कलमा साफल्यमातन्वते दुर्भिक्ष्यान् मम सेवकस्य भगवन् विशेष भीतिः कुता पापोत्पात विमोचनाय रुचिरेश्वर्याय मृत्युञ्जय स्तोत्रध्याननति प्रदक्षिण सपर यालोचना कर्णने जिह्वा चित्तशिरोङ्गृहस्तनयन श्रौतैरहं प्रार्थितो मामाज्ञापय तन्निरूपय मुहुर्मामेव मामे अवचः गाम्भीर्यं परिखापदं घनधृतिः प्राकार उद्यत गुणः स्तोमश्चाप्तबलं घनेन्द्रियवचो द्वाराणि देहे स्थितः विद्या वस्तु समृद्धिरित्यखिल सामग्रिसमेति सदा दुर्गाति प्रिय देव मामक मनो दुर्गे निवासं कुरु। धर्मो मे चतुरंग्रिकः सुचरितः पापं विना संगतं काम क्रोध मदादयो विगलितः काला सुख विस्कृतः ज्ञानानंद महौषधि सुफलिता कैवल्यनाथे सदा माने मानस पुंडरीक नगरे राजा वतंसे स्थिते। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज एक सुशासन की बात करते हैं। राष्ट्र तभी समृद्ध हो सकता है जब राष्ट्राध्यक्ष में नैतिकता हो। समाज सुसंगठित तब होता है राजा स्वयं ही यम नियमों में रहता हो। राष्ट्राध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो राज्य कितना समृद्ध हो सकता है और कोई राष्ट्र कितना विपन्न हो सकता है। इसका यहां शंकराचार्य जी एक उपमा देते हुए भगवान शिव के प्रति अपने भक्ति भाव के इन शब्दों को अर्पण करते हैं। यहां भगवान शिव के लिए संबोधन किया है, मान्ये राजवतंसे, आप सभी के मान्य राजा हैं। ऐसा नहीं है कि कोई माने और कोई न माने। वास्तव में राज्याध्यक्ष राज्याध्यक्ष सर्वमान्य होना ही चाहिए। एक पार्टी माने और दूसरी पार्टी न माने, वो निर्विवाद नहीं हो सकता है। इसीलिए वास्तव में ये कहा तो जाता है कि आज के 21वीं शताब्दी प्रजातंत्र गणतंत्र प्रजासत्ता का है, बहुदलीय प्रजातंत्र को सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि सभी को भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है। ये इसीलिए वे लोग चाहते हैं इस प्रजातंत्र को, जो भ्रष्टाचार करने का मौका हमको भी मिले। नैतिक और ईमानदार सुचरित निष्ठावान राष्ट्रभक्त बनने के लिए प्रजातंत्र की क्या आवश्यकता है। हाँ, तो इसका मतलब मैं प्रजातंत्र का खंडन करने वाला हूं ऐसा नहीं समझ लेना, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो प्रजातंत्र की मूल हृदय क्या है, तो ये प्रजा को भ्रष्टाचार करने का अवसर की प्राप्ति दिलाना, यही है। नहीं तो तुमको कुछ लेना नहीं है, तो अनुशासित जीवन जीना है तो किसी भी तंत्र में तुम जी सकते हो ना, प्रजा ही तंत्र क्यों चाहिए। अनुशासित जीवन जीना हो तो किसी भी तंत्र में जी सकते हो, ईमानदार जीवन जीना हो तो किसी भी तंत्र में जी सकते हो। अरे और तंत्र को मानो चाहे न मानो, भगवत तंत्र को तो तुम मान सकते हो। एक भगवत तंत्र को मानो, भगवान से डरो, ये सब का साक्षी वो परमात्मा है, मेरे हर कर्मों का साक्षी वो परमात्मा है। और कोई देखे चाहे न देखे, वह परमात्मा मेरे हर कर्म को जानता है, और वह मुझे दंड देने और पुरस्कार देने में समर्थ भी है। मेरे सुकर्मों को देखकर वह जितना सुकर्म का फल हो सकता है वह तो दे सकता ही है, उसके अतिरिक्त अतिरिक्त प्रसन्न होकर मुझे और भी कुछ दे सकता है, और मेरे कुकर्मों को देखकर मुझे किसी भी समय में कुछ भी किसी भी प्रकार का दंड भी दे सकता है। तो ये भगवत तंत्र को जिसने हृदय में धारण किया हो, उसको बाहर के किसी भी तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्यथा जिसने हृदय में भगवत तंत्र को धारण नहीं किया हो, वो चाहे वामपंथियों की तरह लाया गया साम्यवादी साम्यवादी हो, चाहे पूंजीवाद हो, चाहे साम्यवाद हो, हमारे पार्टी का सिद्धांत ये बात है, फलाना बात है, फलाना बात है, अरे भाई हमको राष्ट्राध्यक्ष बनाओ, हम विकास करेंगे। अरे भाई राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनाएंगे तो क्या विनाश करोगे? तुम्हारे पार्टी को यदि विजय नहीं बनाएंगे तो क्या तुम विनाश करोगे? तो फिर तुम राष्ट्रद्रोही हो, और क्या। सत्ता में गए तो विकास करे, और सत्ता में नहीं पहुंचे तो क्या विनाश करोगे? तो तुमको राज्य में रहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रद्रोही हो। राष्ट्र का विकास तो चाहे सत्ता में रहो चाहे सत्ता में न रहो, ईमानदारी तो चाहे सत्ता में रहो चाहे सत्ता में नहीं रहो, नैतिकता चाहे सत्ता में रहो चाहे न रहो, ये तो मानव का भूषण है, किसी पार्टी का पैटर्न नहीं है। ये तो मानव का भूषण है। तो भगवान शंकराचार्य जी, राष्ट्र क्यों इस प्रकार से दुर्भिक्ष में पड़ता है, राष्ट्र में क्यों इस तरह अनुशासनहीनता उद्दंडता पनप रही है, इसके लिए भगवान शंकराचार्य जी शिव जी के साथ संवाद कर रहे हैं। धर्मो में चतुरंग्रिक सुचरिता हे राजा वतन से, राजाओं में श्रेष्ठ राजा को राजा वतंसह कहते हैं। तम तत्सबुद्धो राजा वतंसे, संबोधन में राजा वतंसे अर्थात राजा वतंस अर्थात सर्वश्रेष्ठ राजा। आप जिस दिन से मानस पुण्यरिका नगरे मेरे इस शरीर रूपी राष्ट्र में मानस हृदय रूपी सिंहासन में आकर जब से विराजमान हुए हैं, आपके सुशासन का ये प्रतिफल है। भगवान शिव को एक राजा की उपमा देकर स्तुति कर रहे हैं। आपके सुशासन का ये प्रतिफल है, आपके अनुशासन का ये प्रतिफल है। दंड देने वालों को आप दंड देते हैं, पुरस्कार देने वालों को पुरस्कार देते हैं, कर्मयोगियों को कर्म का अवसर देते हैं, भक्तों को भक्ति का अवसर देते हैं, योगियों को योग का अवसर देते हैं। आपके राज्य में सभी को सब अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए भगवान शिव को कह रहे हैं राजा वतन से मानस नगर स्थिति, आपके द्वारा मेरे मानस सिंहासन में आकर विराजमान हो जाने के बाद फिर देखिए मेरे राज्य में, मेरे इस साम्राज्य में, इस राष्ट्र में क्या नहीं हुआ है। धर्मों में चतुरंग्रिका सुचरित, धर्म सुचरित चतुरंग, धर्म के चार अंग हैं, इसलिए धर्म चतुरंग। चतुरंग का अर्थ चारों दिशा भी होता है, चारों तरफ धर्म का ही साम्राज्य है। सभी लोग धार्मिक हो गए, सभी लोग धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, या यूं समझ लीजिए कि आपके हृदय में आने के बाद अधर्म का तो संकल्प ही नहीं हो रहा है। इस श्लोक का आप एक पौराणिक प्रसंग से आप ध्यान देकर समझ सकते हैं। भागवत का प्रसंग है, आप लोगों ने तो कई बार भागवत सुनी है। भागवत में एक राजा था भाई, कई राजा हैं भागवत में तो, लेकिन उन कई राजाओं में से एक राजा था जिसका नाम बेन था। सुना है ना, वो अच्छा राजा था कि दुष्ट राजा था? है आजकल के जैसे ही था वो, उससे भी खराब था। लेकिन आजकल के लोग कुछ कुछ उसी से सीख रहे हैं, जिसका नाम था बेन। उसके राज्य सिंहासन में जाते ही राष्ट्र अनुशासनहीन हो गया, चोर बढ़ गए, डाका बढ़ गए, व्यभिचारी बढ़ गए, दुराचारी बढ़ गए, भक्तों को भक्ति करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है, भक्तों को यातना दी जा रही है, व्यापारियों को ईमानदारी से व्यापार करना नहीं दिया जा रहा है। आजकल भी ऐसे दिखता है, कहीं ना कहीं हो रहा है। तुम व्यापार करो, खूब चोरी करो, और तुम भी खाओ, हमको भी खाओ। हमारा वैदिक सनातन धर्म ये कहता था जियो और जीने दो, और आज की राजनीति कहती है खाओ और खाने दो। समझे नहीं? तुम भी खाओ, हमको भी दो, अकेले मत खाओ भाई, और जो अकेले खाने लगेगा उसको फिर जीना नहीं देंगे। रात दिन कुछ न कुछ बहाना बना के इनकम टैक्स पारेंगे, कुछ करेंगे, यूं किया त्यों किया, हजार फाइल निकालेंगे, अब हैरान पारेंगे उसको। यदि तुम भी खाओ करके दे दिया बलि, बलि दे, बलि देना बोलते हैं नहीं, भूतों को बलि दिया जाता है। ये सब भूत हैं, बेन के संतति हैं सब, उनको समय समय बलि न चढ़ाओ तो फिर ये हैरान करेंगे। हां, तो बेन ऐसे ही राजा था, तो ऋषियों ने मुझको श्राप दे दिया कि मर जा, तो बेचारा मर गया। हां, एक निमित्त है ऋषियों का श्राप, तो मरना तो वो अपने ही दुष्टता से मरा है। भागवत में जब भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम ने कंसों को मारा और उसके बाद कारागार में जाकर अपने माता पिता वसुदेव देवकी को मुक्त किया, तो कृष्ण के साथ साथ ही नंद बाबा यशोदा भी उसका कारागार में गए। और जैसे ही कृष्ण ने वसुदेव देवकी को मुक्त किया, वैसे ही वसुदेव जी नंद बाबा के साथ आलिंगन करके कहने लगे, ओह आप धन्य हैं, आपके पुत्र ने, आपके बेटे ने, वसुदेव ये नहीं कह रहे कि मेरा बेटे, मेरे बेटे ने, आपके बेटे, आपका पुत्र ने दुष्ट कंसों को मारा और हमको कारागार से मुक्त कर दिया, ऐसे पुत्र के पिता आप धन्य हो। देवकी भी यशोदा को यही बोल रही है, आपने क्या सत्पुत्र जन्माया है, आपके बेटे के करतूत से, बेटे के करनी से दुष्ट कंस मारा गया और हम इस जेल से मुक्त हो गए, हमको मुक्त किया, आप लोगों को बहुत धन्यवाद है, बधाई है। नंद बाबा बोलते हैं कि वसुदेव जी, मेरा बेटा ये छोटा सा बालक, वो कंसों को क्या मारेगा है? उसमें कहां ताकत है, कहां शक्ति है। रिंसा स्वपापे न विहिंसिता खलो खलह, रिंसा स्वपापे न विहिंसिता, दुष्ट व्यक्ति अपने ही पापों से मारा जाता है। आपने कहा कि मेरे बेटे कृष्ण ने उसको मारा है, उसमें क्या ताकत था उसको, थी उसको मारने की, वो तो अपने पापों से मारा गया है, मेरा बेटा एक निमित्त बन गया है। और आपने ये कहा कि हम लोगों को, सत्पुरुषों को जेल से मुक्त करा दी, साधु समत्ते न भयात विमुच्यते, आपको इस जेल से मुक्त करने की क्षमता हमारे बेटे में कहां थी, आप तो अपने समत्व भाव से ही आप खुद मुक्त हुए हैं। कोई बंधन में पड़ता है तो विषमता के कारण समस्या में पड़ता है, सारी समस्या से मुक्ति तो समभाव से ही संभव है। तो इसी तरह वहां राजा बेन को संतों ने श्राप दे दिया, श्राप निमित्त है, उसके अपने करतूत ही उसको मारने में पर्याप्त थी, संत निमित्त बन गए। जैसे नंद बाबा कहते हैं कंस मरने में उसका अपने पाप पर्याप्त है, मेरा बेटा कृष्ण तो निमित्त मात्र है। हिंस स्वपापेन विहिंसित खला साधु समत्तेन भयात विमुच्यते, नंद बाबा का मुख से निकला हुआ श्लोक है ये। इसी तरह बेन मारा गया, अब क्या करें, राज्य तो राजा विहीन तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि और भी अनर्थ होगा। इसलिए नीतिकारों ने कहा है, राष्ट्र तीन प्रकार से विनष्ट होता है, अनायका विनश्यन्ति, यदि राष्ट्र में नायक नहीं हुआ तो वो राष्ट्र विनाश को प्राप्त होगा। नश्यन्ति बहुनायका, यदि राष्ट्र में ज्यादा नायक हो गए तो राष्ट्र नष्ट हो जाता है। हाँ, आजकल वो उसका आगे का बोलना उचित नहीं है, नहीं बोलूंगा है, बोलना नहीं चाहिए आजकल के हिसाब से, आजकल के हिसाब से हाँ बोलना नहीं चाहिए, कानूनन भी अपराध है और सामाजिक दृष्टि से भी बोलना ठीक नहीं है। तीसरा पक्ष है स्त्री नायिका, तो फिर आप लोग नाराज हो जाओगे, इसलिए हमने कहा बोलना ठीक नहीं है। ये बोलना ठीक नहीं कह के बोल दो तो फिर क्षमा हो जाता है ना। आप लोगों ने क्षमा किया कि नहीं बोलो। तो ये तीन कारणों से राष्ट्र नष्ट होता है, या तो नायक नहीं है तो राष्ट्र नष्ट हो जाता है, या बहु नायक हो गए तो फिर राष्ट्र नष्ट हो जाता है, और स्त्री नायक हो गई तो फिर भी राष्ट्र खत्म हो जाता है। लेकिन इतिहास में तो श्रीलंका में भंडारा नायिका हुई, इंडिया में इंदिरा हुई है, और पाकिस्तान में नसरत भुट्टो हुई है ना, बेनजीर भुट्टो, और बांग्लादेश में भी हुई, आसपास में सभी स्त्री नायिका ही हुए भाई, मार्गरेट थैचर हो गई, क्या क्या हुए हैं। मैं इसीलिए मैंने कहा ना आजकल बोलना ठीक नहीं है। और इन लोगों के प्रशासन में कोई कमी खोट नहीं थी, वो सही बात है। आज के यदि मूल्यांकन किया जाए प्रशासकों की, राष्ट्राध्यक्ष की, सुशासन की बात करें, तो इन लोगों की जिनका नाम अभी लिया गया, राष्ट्र व्यवस्था संचालन करने में ये बहुत ही सक्षम नेता थे, नेत्री थी, और उसके मुकाल में आज कोई नेता दिख नहीं रहा है, हैं? उनकी अनुशासनता थी, अच्छी थी, मैं प्रशंसा करता हूं उन लोगों की, हैं? लेकिन नीतिकारों ने पता नहीं कैसे कह दिया है, शायद धुंधुली जैसी कोई नेत्री पहुंची होगी सिंहासन में, हैं? उन नीतिकारों के समय में कोई धुंधुली जैसी नेत्री रही होगी, पता है ना आप लोगों को, कहीं शूर्पणखा जैसी रही होगी नेत्री, तब उन्होंने कहा स्त्री नायिका विनश्यति। तो फिर ऋषियों ने कहा कि राजा तो चाहिए, अब क्या करें। फिर उसी के शरीर को मंथन किया, मंथन करने के बाद पृथु उत्पन्न हुए, और उनका नाम पृथु रखा इसीलिए क्योंकि पृथ्वी को सस्यशालिनी बनाया। बेन जब तक राजा हुआ पृथ्वी में अनाज उत्पन्न नहीं होता था, दुर्भिक्ष हो गया था, चोर इतने थे, डाकू इतने थे, क्योंकि दुर्भिक्ष हो गया तो फिर चोर और डाकू होना ही थी, क्योंकि विकास का कोई काम हुआ ही नहीं था, तो विनाश ही विनाश था। तब ऋषियों ने शरीर का, बेन के शरीर को मंथन किया, मंथन किया तो पृथु प्रकट हुए, तो उन्हीं को राजा बना दिया।